गलत बात है। अपना शरीर दूसरों को अगर आश्रय है तो शरीर छोड़ना नहीं चाहिए, उसको संरक्षण करना चाहिए कम से कम दूसरों के लिए। तो ऐसा व्यक्ति क्यों छोड़ने आ गए, गंगा के तट पर क्यों आ गए, इस तरह से यह प्रश्न पूछा गया। और शुरुआत हुई वो परीक्षित के बारे में ही शुरू हुआ कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, फिर अर्जुन को पता चला तो अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को काउंटरैक्ट किया और फिर से जाके अर्जुन को सजा दी, सातवां अध्याय हो गया। पर इतने मग्न थे अर्जुन के बारे में, अर्जुन के बारे में बोले तो भगवान के बारे में शुरू हो गया बात, तो भगवान के बारे में बोले तो उनके भक्तों के बारे में शुरू हो गया। तो वहां से कुंती महारानी आई और बोले अभी सब हो गया, सबको संरक्षण, कैसा संरक्षण किया उन्होंने। न केवल परीक्षित महाराज को बचाया पर उनकी मां उत्तरा को बचाया, कितने लोगों को बचाया, इसको बचाया उसको बचाया, इस तरह से वो हस्तिनापुर छोड़कर जाने लगे। तो कुंती महारानी की प्रार्थना आ गई आठवां अध्याय में। फिर वहां से सबको लेकर भीष्म पितामह के सामने गए क्योंकि वो शरीर छोड़ रहे थे, उनके पास आदान प्रदान करना था, नौवां अध्याय हो गया। उसके बाद भीष्म पितामह शरीर छोड़ने के बाद भगवान बोले अभी तो मैं जा ही रहा हूं हस्तिनापुर छोड़ के। तो हस्तिनापुर से निकले तो सारे रानियां वहां, सारे जो महिलाएं थी छत पर खड़ी हुई, वो सब प्रार्थना करने लगी, भगवान कितने सुंदर, नहीं जाओ नहीं जाओ, जाते जा रहे तो ठीक है प्रार्थना। दसवां अध्याय, हस्तिनापुर से प्रस्थान द्वारका के लिए। और फिर द्वारका पहुंचे, पहुंचने के बाद द्वारकावासियों ने कैसा उनको स्वागत किया, फिर उसके बाद रानियों ने कैसा स्वागत किया, उसके बाद ब्राह्मणों ने कैसा स्वागत किया, जन साधारण कैसे स्वागत किए, यहां तक कि वेश्या लोग द्वारका के, वो लोगों ने कैसा स्वागत किया। इस तरह से ग्यारहवां अध्याय हो गया, मतलब शुरू हुआ था कथा ऐसा एक बाईपास लेके जूम ऐसा चला गया। बाद में नैमिषारण्य के ऋषियों को आया था, अरे पर इन लोगों को समझा भी नहीं कि वो एक्चुअली बाईपास हो गया, इतने मग्न हो गए कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, तो ऐसा हो गया। फिर बाद में याद आया, हाँ हम लोग पूछे थे परीक्षित महाराज के बारे में, चलो चलो फिर से शुरू। जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय में नित्यानंद प्रभु अपने सारे पार्षदों के साथ बंगाल जाने की तैयारी किए, महाप्रभु ने बोला तुम्हें बंगाल जाना ही पड़ेगा, उड़ीसा क्यों आ गया, तुमको बोला था नहीं आने के लिए, अभी कृपया जाओ आप बंगाल। तो अपने सारे ग्वाल बाल पार्षद जो हैं ब्रज के, जो उनके पार्षद के रूप में इस बार नित्यानंद प्रभु के साथ आए थे, जब उनके साथ बोले चलो चलते हैं, चलते चलते कीर्तन होता, कीर्तन करते 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 बाईपास हो गया, डिटूर हो गया, ऐसा 20-20 किलोमीटर चले जाते थे, उनको मालूम भी नहीं कहां जा रहे हैं, किधर है, जमीन है या पानी है नीचे, ऐसे चले जाते थे। चले जाने के बाद याद आता था, अरे अरे हम लोग बंगाल जा रहे हैं, फिर पूछते थे बंगाल राजधानी जाने का रास्ता, अरे ऐसा नहीं 20 किलोमीटर ऐसा जाना पड़ेगा हमको, फिर जाते थे और जाते 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 भूल जाते थे किधर जा रहे हो, ऐसे चले जाते सीधा और 20 किलोमीटर उस साइड फिर से आना। उस तरह से भागवत में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर हमको नहीं करना चाहिए, हमको जैसा भागवत है वैसे जाना चाहिए, पर स्वाभाविक है कभी कभी एक विषय को लेने पर विषय को थोड़ा गहराई में चले जाते हैं, एब्जॉर्प्शन ये मुख्य चीज है, एब्जॉर्प्शन मतलब एकाग्रचित्त होना, इतने मग्न हो जाते हैं, मग्नता इतने मग्न हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि कहां है क्या चर्चा कर रहे हैं, इतना विषय इतना उनको आकर्षित करता है कि उसी के बारे में सुनते रहते बाद बोलते कहां से शुरू किए थे हम लोग, हाँ वो प्रश्न था, फिर से वहां से चल। तो इस तरह से पांच अध्याय चला गया। ऑफ कोर्स ये अध्याय क्यों डाले व्यासदेव ने, भगवान श्री कृष्ण को इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि अब नहीं आएंगे फिर से, अभी दसवें स्कंद में आएंगे बस। तो लोगों को एक सैंपल देना है ना पहले, भागवत नवा अध्याय नवा स्कंद कौन पढ़ेगा, फिर पहले एक फ्री सैंपल देते हैं, ये देखो भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल है, कितने सुंदर है, कितने लोग पागल है उनके पीछे, कुंती महारानी क्या कहती है, भीष्म पितामह से कैसे आदान प्रदान करते हैं, कैसे संरक्षण करते हैं अपने भक्तों की भक्ति की, कैसे उनको सारे हस्तिनापुर के लोग प्रेम करते हैं, कैसे द्वारकावासियों के साथ उनका आदान प्रदान। कृष्ण को इंट्रोड्यूस किया गया यहां प्रथम स्कंद में, और कृष्ण और उनके भक्तों के साथ प्रेममय आदान प्रदान को एक सैंपल दिया गया। और बोलते हैं अभी सही में जानना चाहते हो इस कृष्ण को, तो अभी नौ स्कंद तक धीरे धीरे जाओ, शुद्ध हो जाओ। शुद्ध होने के बाद फिर से आपको एंट्री मिलेगा वृंदावन, अभी नहीं। अभी द्वारका और हस्तिनापुर में एक सैंपल दिखाया, अब बोले वृंदावन जाना है तो और नौ स्कंद पढ़ो, अभी सिस्टमैटिकली पढ़ो, समझो, उतारो, उसके बाद आपको दशम स्कंद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्य से यतो अन्वयात, जो मैंने शुरू में बताया किसके बारे में चर्चा करने वाला हूं, वो मेन टॉपिक बिल्डअप होके आएगा नवा दशम स्कंद में। तो यहां वो प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवित पुनः, ईशेन जीवित पुनः, पुनर्जीवित किया परीक्षित महाराज को, यानी शरीर जल गया था उनका शरीर। एक जगह कहा जाता है कि उनका शरीर जल के राख हो गया, उसको फिर से जागृत किया, दूसरी जगह जाता है कि लगने ही नहीं दिया और भ्रमण करके उसको रोक दिया। पर कुछ भी हो, जिसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा मतलब पोटेंशियली डेड। अगर ब्रह्मास्त्र किसी के ऊपर छोड़ दिया गया तो समझ लो प्रैक्टिकली मर ही गया, समय की बात है बस कब आके लगेगा। किसी ने गोली मैंने चला दिया आपके ऊपर तो भले 5 सेकंड के बाद मरोगे या अभी मतलब मर गए हो ऑलरेडी, क्योंकि गोली आने वाली है, लगने वाली है, पर आप बोलेंगे नहीं 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 मैं गोली से बच सकता हूं, पर ब्रह्मास्त्र से नहीं बच सकते जिसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो प्रैक्टिकली मरे हुए व्यक्ति को फिर से पुनर्जीवित किया। फिर कहते हैं तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् प्रेत्य गतवान यथा। के तस्य जन्म महाबुद्धे, ऐसे महान बुद्धिमान व्यक्ति जो परीक्षित महाराज हैं उनका जन्म है महाश्चर्यम, कितना उनका जन्म भी कितना अद्भुत था। कर्माणि च महात्मनः, उनके कर्म भी कितने अद्भुत थे। निधनम च यथैव आसीत्, अरे उनका शरीर छोड़ना भी कितना, उनका मृत्यु जो हुआ वो भी कितना अद्भुत है। और सप्रेत्य गतवान यथा, सप्रेत्य मतलब शरीर छोड़ने के बाद जो लक्ष्य की ओर गए वो भी कितना अद्भुत था। मतलब जन्म से लेकर फ्रॉम द वूम टू द टूम एवरीथिंग इज वंडरफुल, सब कुछ उनका अद्भुत रहा। जन्म कैसे अद्भुत रहा, हम में से कितने लोग हैं जिनको बचाने के लिए मां के गर्भ में ही भगवान अंदर आके बोले हरि बोल, इधर ही रहो, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको संरक्षण करने वाला हूं। भगवान खुद उनकी मां के गर्भ में प्रवेश करके अपने गदा लिए और अपने सुदर्शन चक्र लिए संरक्षण किए, तो उनका जन्म महाश्चर्यम। इनफैक्ट उनका नाम पड़ा परीक्षित, इसीलिए परीक्षित देती कि वो जन्म गर्भ से बाहर आने के बाद सबको देखते थे यही व्यक्ति नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये तो आकर्षण नहीं, ये इतना आकर्षक नहीं। हरेक को वो परीक्षा करते थे, जिसको मैंने गर्भ के अंदर देखा ये वही है क्या। और इस तरह से ये परीक्षा करते 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 ही वो कृष्ण भावना भाव शुद्ध भक्त थे, वो हमेशा कृष्ण का स्मरण करते थे हरे को देखते ही। तो उनका जन्म महाश्चर्यम और उनके कर्म भी महाश्चर्यम। हमें से कितने लोग हैं, यहां से बड़े बड़े राजा हुए कितने लोग हैं जो साक्षात कली को नियंत्रण करके दमन किया कली का, और कली जिनके सामने डगमगा या कांप रहा था, थरथरा रहा था कांप डर के मारे, आश्रय लिया कली ने, मुझे आश्रय दीजिए। और ऐसे राजा थे तलवार निकालकर बोले कली को बोले मेरे होते हुए तेरी ये हिम्मत देखता हूं तो कहां असर कर सकता है। और एक्चुअली कली साक्षात कली कांप रहा था परीक्षित महाराज के सामने। आजकल के बड़े बड़े जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो कली के चेले हैं, सबके सब शरणागत भक्त हैं कली के। सर्वधर्मान परित्यज्य कली में एकम शरणम व्रज, क्योंकि ये चार चीज जहां निवास दिया गया उनको, कली को चार जगह निवास स्थान दिया गया, जहां मांसाहार होता है, नशा होता है, जुआ होता है, व्यभिचार होता है, उसके एजेंट्स वही लोग हैं, परमिशन देने वाले वही लोग हैं, उनके मेंटेनर वही लोग हैं, उनको जन्म देने वाले और उनको मेंटेन करने वाले वही लोग हैं। साक्षात कली के स्वरूप है वो लोग, कली को दूर करने के बाद वही साक्षात कली के प्रतिनिधि है वो लोग। तो तस्य कर्म अद्भुतम, उनके कर्म भी बड़े अद्भुत थे कि साक्षात कली को उन्होंने दमन किया और शरणागत किया और भीख मांगने के कारण उसको एक स्थान भी दिया। बोले तुम्हारा स्थान ही नहीं मेरे लिए, कली के लिए स्थान ही नहीं था परीक्षित महाराज के राज्य में, और भीख मांगा, गिड़गिड़ाया तो उसको एक स्थान दिया, चलो जहां बहुत सोना है वहां जाके निवास करो। और फिर निधनम च यथैव आसीत, अरे उनका मृत्यु भी बड़ा अद्भुत था। क्यों? क्योंकि उनके पर उनके ऊपर जो श्राप दिया गया वो एक्चुअली अन्याय था। एक छोटा मच्छर मारे तो तोप लेके नहीं मार सकते उसको, तो एक छोटे एक्चुअली अपराध भी नहीं एक रूप से देखा जाए, पर अपराध समझो भी हो सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति उस महान उस व्यक्ति के स्तर पर ऐसा कार्य नहीं करना था कि उन्होंने मरे सांप को शमी ऋषि के सर पर डाल गले में डाल दिया, पर फिर भी ऐसा शाप कि सात दिन में मर जाओ। तो ये और परीक्षित महाराज उस शाप को चाहे तो काउंटर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं उपशाप निकाल सकते थे वो अपना उसका असर से अपने आप को निकाल, बल्कि उपशाप भी दे सकते थे, भाई सात दिन में तू साढ़े छह दिन में ही मर जाएगा। उनमें वो शक्ति थी, परीक्षित महाराज में उतनी शक्ति थी कि उस ब्राह्मण को भी, ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र को भी शाप दे सकते थे श्रृंगी को, पर उन्होंने शाप नहीं दिया। तो एक बड़ा आदमी है, अरे एक छोटा सा व्यक्ति उसको कुछ उल्टा सीधा कह दे क्यों नहीं कर सकता, वापस क्या नहीं कर सकता वो, पर उन्होंने किया नहीं। यहां तक कि भगवान से भी मदद नहीं मांगी कि भगवान मैं आप ही की सेवा में लगा हुआ, इतना सब कार्य कर रहा हूं और ये मूर्ख बालक ने मुझे साथ दे दिया है, मुझे बचाओ, मैं नहीं मरना चाहता अभी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना भी नहीं की बचने के लिए। समय के रूप में भगवान का जो योजना है समय के रूप में आता है, समय एक्चुअली भगवान का योजना है, और योजना के अनुसार थिंग्स आर ब्रॉट टू अस बाय टाइम। समय जो है हमको लाता है, हर एक चीज ला के देता है, ये तुमने वो बीज बोया था मालूम, ये लो फल लो, मालूम है 10 साल पहले तुमने आम का बीज बोया था, ये लो फल खाओ, बहुत अच्छा है आम रस। तुमने नीम का फल बोया था मालूम है बीज, अब ये नीम खाओ कड़वा। तो इस तरह से सुख दुख शीत उष्ण सुख दुख जो भी है मान अपमान, जो ये चक्र जो है काल चक्र, हमें समय के रूप में जो हमने डाला है वही चीज ला के दे रहा है हमको। एक भक्त देखता है कि वो समय साक्षात भगवान है और भगवान के स्वरूप उनका योजना वो ला के दे रहे हैं, ये देखो ये फैसिलिटी, चलो क्या करोगे अभी, तुम मेरी सेवा करोगे कि मेरे से दूर से भागोगे, तुम डिसाइड करो, मैं तो ला के दे रहा हूं तुमको, एक मौका दे रहा हूं। एवरी मोमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड एज ए गिफ्ट बाय द लॉर्ड, क्या करते हो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मैंने तुमको एक मनुष्य जीवन दिया है और भगवान समान है, सबके प्रति समान है, सबको एक दिन में 24 घंटा दिए हैं, ऐसा नहीं कि गरीबों को सिर्फ 16 घंटा बस और तुम अमीर हो चलो 26 घंटा, नहीं सभी को 24 घंटा ही दिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सब हम सर्वभूतेषु नमे देशोस्ति न प्रिय, भगवान सबके प्रति समान, सबको 24 घंटा ही दिए, सबको 100 साल का उम्र दिए। आप ठीक से उसको मैनेज नहीं करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी पर टाइम मैनेजमेंट, टाइम सबको उतने ही दिए, एक हफ्ते में सबको 7 ही दिन दिया है, किसी को 8 किसी को 2 नहीं दिया, एक महीने में 33 या 31 या कभी कभी फरवरी में 29 या 28, मतलब भगवान सबको समान दिए, पर उसका उपयोग और दुरुपयोग या सदुपयोग कैसे करते हैं उसके द्वारा हमें पता चलता है कि हम कृतज्ञ हैं कि कृतघ्न हैं। तो परीक्षित महाराज ने इस शाप को भी भगवान का एक स्वरूप देखा, इस तरह से भगवान आए हैं तो मैं आई विल वेलकम। प्रभुपाद जी भी लिखते हैं लीलामृत में, जब 1940s में कलकत्ता के ऊपर बॉम्ब डाल रहे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, बॉम्ब गिर रहे थे, सब भाग रहे थे, बॉम्ब आया, तो प्रभुपाद जी भगवान का एक गिफ्ट है ये, जो समय के रूप में काल के रूप में बॉम्ब के रूप में आता है कभी कभी, तो बोले ठीक है मेरे को मरना ही है तो कहां भी भागूंगा तो सर पे बॉम्ब गिरेगा, कहां कहां भागू, और नहीं मरना है तो बॉम्ब बगल में भी फूटेगा, मैं अपना आराम से पूरी बना कचौरी बना के खाते रहूंगा। तो आराम से वो सब सील कर दिए घर को और फर्स्ट क्लास कचौरी बना के भगवान को भोग लगा के खा रहे थे। तो उन्होंने काउंट्रैक्ट नहीं किया बल्कि समय का लाया हुआ भगवान की योजना देखा और बड़े उत्साह पूर्वक खुशी से और बहुत सही तरीके से उन्होंने अपने आप को तैयार किया भगवान के इस उपहार को स्वीकार करने के लिए। जैसे मैं उस दिन बता रहा था भक्ति तीर्थ महाराज ने लिखा है जब उनको कैंसर आया, ऑफ कोर्स उन्होंने कैंसर को के लिए जो जो करना है किया, उसके बाद भी जब देखा कि नहीं भगवान देना ही चाहते ये गिफ्ट मुझे, उपहार देना ही चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है और अपने आप को तैयारी की इस उपहार को स्वीकार करने के लिए। बड़े उत्साहपूर्वक और अच्छी तरह से तैयारी की अपने आप को। यस माय लॉर्ड द कप दैट यू हैव गिवन, जिसे जीसस ने कहा नहीं मुझे शायद भगवान की कुछ योजना है इसके अंदर, इसके द्वारा ही मेरे को पूरे, मैं उनकी सेवा में शरणागत हूं, शायद इसी के द्वारा वो कुछ सिखाना चाहते हैं पूरे विश्व को, ठीक है मैं शरणागत हूं। एक्चुअली मैं पीना नहीं चाहता, जीसस ने यह भी कहा एक बार कहा कि ये कप जो आप दे रहे हो ना, ये कप जो है बहुत कड़वा है, मैं पीना नहीं चाहता हूं, पर अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं पीने के लिए तैयार हूं, और उन्होंने पिया उसको। और उसके द्वारा, क्योंकि भगवान की योजना कुछ और थी, अरे तुम जीवित रहोगे 3 साल में जो नहीं कर पाओगे ये 3 दिन के अंदर कर लोगे पूरे विश्व भर में, 2000 साल तक इसका असर पड़ेगा, चिंता मत करो, तो भगवान की योजना क्या मालूम। तो इस तरह से परीक्षित महाराज अगर अपने आप की रक्षा कर लेते, शाप दे देते वापस उस श्रृंगी को, तो 5000 साल बाद आज हम लोग यहां बैठ के परीक्षित महाराज की चर्चा नहीं करते। तो उन्होंने क्योंकि भगवान की शरण गए और भगवान की योजना को पूर्ण रूप से जैसा है वैसा स्वीकार किया, पूरे विश्व भर में हजारों हजारों सालों से महान महात्माओं महात्मा लोग हमेशा इस भागवत को चर्चा करते आए हैं, 5000 साल से देखिए इसी भागवत की चर्चा करते हैं, परीक्षित महाराज का गुणगान गाते हैं। और परीक्षित महाराज अगर नहीं स्वीकार करते तो भागवतम होता ही नहीं, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी किसको बोलते, और सुखदेव गोस्वामी बोलते नहीं तो शुक संहिता ये भागवत ही नहीं होता। तो भगवान परीक्षित महाराज पूर्ण रूप से तैयार हो गए, खुशी खुशी और बड़े सही तरह से अपने आप को तैयारी की। और परीक्षित महाराज इतने सौभाग्यशाली थे कि उनको 7 दिन का नोटिस मिला कि तुम अभी शरीर छोड़ने वाले हो 7 दिन के अंदर एग्जैक्टली, और उन्होंने, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, जब नोटिस मिला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस नोटिस का पूरा फायदा उठाया। बोले 7 दिन का नोटिस है, इमीडिएटली उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। बोले 7 दिन ये सब भोग करके क्या फायदा, सब कुछ छोड़ दिया, अपना परिवार, अपना घर, अपना राज्य, सब कुछ, एवरीथिंग, एब्सोल्युटली। आप देखेंगे फोटो परीक्षित महाराज का, तो एक्चुअली कपड़े भी निकाल दिए, सिर्फ वो कॉपी नहीं पहने हुए बस, मतलब एब्सोल्युटली खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। और पूरा समय उन्होंने महान संत और भक्त सुखदेव गोस्वामी के साथ 7 दिन 7 रात निरंतर लगातार न सोए न खाए न कुछ पिए, पूर्ण रूप से उस 7 दिन का फायदा उठा लिया और अपने जीवन को सफल किया। और इस तरह से उनका मृत्यु भी अद्भुत है, और इसीलिए कोई शंका ही नहीं कि इसके बाद उनका लक्ष्य किधर है, जो उनका जो कहां जा रहे हो मृत्यु के बाद। तो इसीलिए सारे ऋषिगण कहते हैं कि न केवल उनका जन्म, न केवल उनकी क्रियाएं, पर उनका शरीर का त्यागना भी इतना अद्भुत था। तो कृपया उस अद्भुत कर्म को हमें सुनाइए। और तीसरे श्लोक में कहते हैं, तद इदम श्रोतुम इच्छामो गदितुम यदि मन्यसे ब्रूहिण श्रद्धधानानाम यस्य गा ज्ञानमदाच्छुकः। तद इदम श्रोतुम इच्छामो, हम इच्छुक हैं, हम उत्सुक हैं, तद इदम श्रोतुम इच्छामो, उनके जन्म, उनके कार्यकलाप, उनके मृत्यु कैसे हुई, उनका लक्ष्य क्या हुआ मृत्यु के बाद, तद इदम श्रोतुम इच्छामो, बहुत उत्सुक हैं हम लोग सुनने के लिए। गदितुम यदि मन्यसे, अगर आप समझते हैं कि ये कृष्ण से संबंधित है और हमारे लिए भक्ति के लिए अनुकूल है और पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है, तो कृपया ब्रूही न हमें बताइए। अगर आप समझते हैं कि ये योग्य प्रश्न है और इसका उत्तर कृष्ण से संबंधित है और योग्य है, तो ब्रूही न श्रद्धधानानाम, श्रद्धधानानाम मीन्स पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक बार बार सुनने के हम इच्छुक हैं। और श्रद्धधाना नाम का मतलब एक जगह दूसरी जगह प्रभुपाद समझाते हैं, सुनने के इच्छुक हैं और सुनने के बाद इसको अपने जीवन में उतारने के इच्छुक हैं, उसको कहते हैं श्रद्धधाना नाम। सुन तो कोई भी सकता है, और कुछ काम नहीं, क्या करे बैठे हैं इधर, बस दूसरा काम होता चले जाते, पर सुनने की इच्छा मतलब श्रद्धधाना नाम मीन्स श्रद्धापूर्वक सुनकर उसको अपने जीवन में उतारने की इच्छा। तो तदिदम श्रोतुम इच्छामो गदितुम यदि मन्यसे ब्रूहिणः श्रद्धधानानाम यस्य ज्ञानम अदात् शुकः। जो ज्ञान सुखदेव गोस्वामी ने उनको दिया परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में, उसको हम सुनने के इच्छुक हैं। यदि आप गदितम यदि मन्यसे, अगर आप समझते हो कि कृष्ण से संबंधित है, किसी राजा के बारे में हम नहीं सुनना चाहते, क्योंकि इतिहास में बहुत सारे राजा हुए और उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, पर वो क्या है, प्रहलाद महाराज कहते हैं वो पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम, वही राजा आया, वही कार्य किया, सिर्फ थोड़ा फॉर्मूला बदला, पर वही चीज किया उसने। और भौतिक चीज हमें नहीं सुनना चाहिए, हमें सुनने की इच्छा नहीं है। तो कृपया अगर कृष्ण से संबंधित है तो सुनाइए इस राजा के बारे में। भागवत में और दूसरे इतिहास पुस्तकों में यही अंतर है, दूसरे इतिहास, यूरोपियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, कर्नाटका हिस्ट्री, महाराष्ट्रन हिस्ट्री, वो हिस्ट्री में उसके बाद वो कौन आया, उसके बाद 3 साल के लिए कोई आया उसको भगा दिया गया, फिर 4 साल के लिए किया, उसके बाद 200 साल तक उसके परिवार चले, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, क्या किया, वही किया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हमको ये नहीं सुनना है। सुन के क्या फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ, आया राम गया राम। पर हमें ऐसा उसमें से चुन चुन के कुछ ऐसा इतिहास सुना जिससे जीवन की जो लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य, वो प्राप्त हो। तो भागवत में देर इज नो क्रोनोलॉजी। कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं ये कौन से हुआ, कौन से, अभी अभी आप बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ और सडनली आप अजामिल का स्टोरी बोलते हैं और उसके बाद सडनली किसी और का चित्रकेतु का कुछ तो स्टोरी बोलते हैं जो 1000 साल तक जिया। अभी कौन से युग में है आप? अभी तो कलयुग का कहानी बोल रहे थे, अभी सतयुग में चले गए। इसके बाद तो पहले पार सार सतयुग का बता दो, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलि। ऐसा नहीं है, देर इज नो क्रोनोलॉजी इन भागवतम। भागवतम डज नॉट डील विथ क्रोनोलॉजी। उसके बाद ये कौन आया, जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण कोई भक्त आया क्या उसमें? अभी देखिए, कभी कभी 8वें स्कंद में आप पढ़ेंगे, उसके दो बेटे थे, दो बेटों में ये था, उसके दो बेटे थे, उसका ये था, उसके 4 बेटे हुए और उसका एक बेटा था ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज 2 अध्याय 4 अध्याय 5 अध्याय 10 अध्याय। उसके 4 पुत्र हुए, उनका नाम था ये, उसके 10 पुत्र हुए, उनका नाम ये था, उसकी पत्नी ये थी, उसकी पत्नी ये थी, फिर और एक, रूस का कहानी पूरा। तो अगर मनवंतर भी सुने तो उसका सुने, उसके 4 पुत्र हुए, सबके तो बच्चे हुए, तो बच्चे तो होते रहते सबके, वो तो ठीक है, पर कोई ऐसा भक्त बना क्या हो उसके बारे में सुना हमको? तो देर इज नो क्रोनोलॉजी इन श्रीमद भागवतम। इसके बाद ये नहीं, जो भगवान से संबंधित है वही। और दूसरी बात है कि ये नहीं देखता, डिटेल नहीं देखता भागवत, डिटेल नहीं देखता भागवत, एसेंस देखता है। कभी कभी भागवत में उतना डिटेल नहीं बताया गया है, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, पर सार में बताया गया है ऐसा हुआ। महाराज चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां थी। रानियों का नाम क्या था? उनका एक साथ शादी हुआ कि 1 साल पहले का रानी का नाम क्या था? कृतद्युति, उतने मालूम है। दूसरे रानी का नाम मालूम है किसी को? महाराज चित्रकेतु के रानियों का सहस्त्र नाम नहीं लिया गया यहां, जरूरत नहीं है हमको, लेना देना नहीं है उनकी, कितने रानी थे। हमको मतलब इससे है कि कृष्ण से जुड़े हुए हो, पहली रानी था नहीं थी, दूसरी रानियों का यही मतलब है, उन्होंने जहर पिला दिया, उससे भी हम कुछ सीख सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए कृष्ण भावना में, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो कहीं से कहीं जोड़ देते हैं, कहीं से कहीं, पर उसमें एक कनेक्शन है। भागवत का कनेक्शन है एडवांसमेंट। प्रथम स्कंद में भगवान के चरण कमल, उससे भगवान के जांग, ऊपर के 2 स्कंद भगवान के वक्षस्थल, और 2 स्कंद भगवान के भुजा, और 9वां स्कंद हो गया भगवान का गला, और 10वां स्कंद हो गया भगवान के मुखारविंद। उसमें भी जो 5 अध्याय है वो भगवान के स्माइल, क्या बोलते हैं, मुस्कान। 11वां स्कंद 12वां स्कंद ऐसे। देर इज ए फ्लो, देर इज ए परफेक्ट सिस्टमैटिक फ्लो, नॉट क्रोनोलॉजिकल फ्लो बट डिवोशनल फ्लो। भक्ति कैसा कैसा प्रगति करना चाहिए, कैसे 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 कैसे। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मन्वंतर ईशानुकथा निरोधो भक्ति निरोधो भक्ति आश्रय। दीज आर द 10 टॉपिक्स सिस्टमैटिकली डिस्कस्ड इन श्रीमद भागवतम। तो श्रीमद भागवतम में अलग क्रोनोलॉजी है, अलग फ्लो ऑफ थॉट है। इसीलिए यहां ये भी डाइग्रेशन हो गया, क्यों ये चर्चा की हम, मैं भूल गया। हाँ, इस राजा, हाँ, गदितुम यदि मन्यसे, अगर आपको लगता है, हाँ बड़े ध्यान से सुन रहे इसलिए कनेक्शन पता लग गया। गदितुम यदि मन्यसे, अगर आप समझते हो कृष्ण से संबंधित हो तो हमको सुनाओ, नहीं तो नहीं सुनना हमको। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये सारे ऋषियों ने सुत गोस्वामी से पूछा, महाराज परीक्षित के जन्म के बारे में, और हां श्रद्धधानानाम श्रोतुम इच्छामो ब्रूहिणः। परीक्षित, ध्यान से सुना एक विद्यार्थी के रूप में, और ऐसा सुनने का असर क्या पड़ा कि उसका फायदा न केवल परीक्षित महाराज को पड़ा बल्कि सुखदेव गोस्वामी को पड़ा और जिन्होंने जो सुन रहे थे उनको भी पड़ा। यह श्रवणम और कीर्तनम की महिमा है। कोई प्रश्न पूछा, किसी ने उत्तर दिया, अर्जुन ने प्रश्न पूछा, भगवान ने उसका उत्तर दिया गीता में, और वो गीता 64 करोड़ लोगों ने सुना उस समय, और उसके बाद 64 करोड़ से ज्यादा अभी लोग सुनते आ रहे हैं 5000 साल से। जो भी सुना उसको भी फायदा, जो पूछा उसको भी फायदा, जो बोला उसको भी फायदा, फायदा ही फायदा। परीक्षित ने पूछा, सुखदेव गोस्वामी ने बोला, सुखदेव गोस्वामी ने, और उसके बाद जो लोग ने सुना सबको फायदा। तो ये श्रवणम है, और ये नवदा भक्ति में नौ के नौ उतार सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, कोई भी एक उतार सकते हैं, कोई दो तीन उतार सकते हैं, कुछ भी उतार सकते हैं। पर ये दो उदाहरण जो है परीक्षित महाराज के, सुखदेव गोस्वामी के, ये पहला दो का अद्भुत उदाहरण है। सिर्फ श्रवणम, परीक्षित महाराज जैसे सिर्फ श्रवणम के द्वारा और उन्होंने अपना जीवन को सफल किया। और सुखदेव गोस्वामी कीर्तनम के उदाहरण है, कैसे भक्ति के एक अंग को भी अगर स्वीकार किया पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से शरणागत हो गए, तो भी जीवन की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं बड़ा एक महत्वपूर्ण वाक्य, ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन इज अटेन्ड बाय सच सीरियस हियरिंग एंड चैंटिंग एंड नॉट अदरवाइज। अगर दिव्य साक्षात्कार को प्राप्त करना है तो बड़े गंभीरता से श्रवणम और कीर्तनम करना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय है नहीं। और इसके उदाहरण ये है परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, इसीलिए वो सुनना चाहते हैं। ये दोनों का उदाहरण बहुत ही अद्भुत है, और बड़े आदर पूर्वक परीक्षित के श्रद्धाना नाम बड़े आदर पूर्वक सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना। परीक्षित महाराज ने बड़े ध्यानपूर्वक सुखदेव गोस्वामी से सुना और इसीलिए उनको फायदा हो गया। तो उनके बारे में अगर हम लोग ध्यान से सुनेंगे तो हमको भी फायदा होगा। यही परंपरा है एक्चुअली। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रभुपाद जी ने बड़े ध्यान से श्रवण किया और समझा। उनसे उनके प्रामाणिक शिष्यों ने बड़े ध्यान से सुना। पहले पहले तो पचा नहीं पाए वो, कुछ चीजें बहुत ही मुश्किल था उनको समझने के लिए, पर फिर भी उन्होंने श्रद्धा पूर्वक सुना। भले अभी मेरी बुद्धि से समझ में नहीं आता हो, पर ऐसा शास्त्र कह रहा है, ऐसा भागवत कह रहा है, तो मैं सुनेंगे। उन्होंने सुना और सुनकर उनका जीवन सफल हो गया। और प्रभुपाद जी और एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य लिखते हैं, आर्डेंट हियरिंग, आर्डेंट हियरिंग मतलब ध्यान पूर्वक श्रवण, श्रद्धा पूर्वक श्रवण फ्रॉम द बोनाफाइड मास्टर इज द ओनली वे टू रिसीव ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो तद्विधि प्रणिपातेन ध्यान पूर्वक श्रवण ही एकमात्र तरीका है। एंड देर इज नो नीड फॉर मेडिकल परफॉर्मेंस और ऑकल्ट मिस्टिसिज्म फॉर मिरेक्युलस इफेक्ट्स। सुने बिना कोई बोलेगा नहीं नहीं अब एक काम करो गुरुदेव, आप ऐसा हाथ रखो ट्रांसफर कर दो, और वो ट्रांसफार्मर एग्जॉस्ट हो गया और ये ट्रांसफार्मर चार्जअप हो गया। ये चार्जअप और किसी तरीका से नहीं, यहां से ही हो सकता है। प्लग पॉइंट यहां एक डालने का, आपके कान में एक डालने का, और वो श्रवणम के द्वारा ही, और कोई तरीका नहीं है। सर पे हाथ रखा, पैर सर के ऊपर रखा, कुछ भी नहीं। मेडिकल परफॉर्मेंस, योगिक परफॉर्मेंस, ऑकल्ट परफॉर्मेंस, ऐसा है भारत में उदाहरण। ऐसा कहा जाता है कि महान संत थे एक, उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और शिष्य के क्या बोलते हैं, हाँ, माथे पे ऐसा उंगली रखा और बोला ट्रांसफर कर दिया पूरा। एक क्षण के अंदर, एक सेकंड के अंदर सर ट्रांसफर किया, शिष्य बेहोश हो गया, ओवर सर शॉक लग गया उसको और ये बेचारा एग्जॉस्ट हो गया, गुरु रोने लगा, सब ट्रांसफर कर दिया, थोड़ा पहले रोक देना था मेरे को, अभी मैं एकदम शक्तिहीन हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है, ये मूर्खता है। कहीं शास्त्रों में एक उदाहरण दीजिए जो गुरु ने पूरा ट्रांसफर कर दिया और गुरु बोल गया अरे अरे पूरा ट्रांसफर कर दिया और शिष्य का ओवरफ्लो हो गया और मर गया, वो बेहोश हो गया। कोई भी एक उदाहरण है पूरे शास्त्रों में? चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शक्ति प्रदान किया, कैसे, 10 दिन बैठकर सुनाए और फिर आशीर्वाद दी, क्योंकि तुम ध्यान से सुन रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर सारी योग्यता है, तुम्हारे अंदर नम्रता है, तुम्हारे अंदर इच्छा है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इसी मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे हृदय में यह ज्ञान उतरे। एक्चुअली सदगुरु के प्रसन्न करने से द्रोणाचार्य आशीर्वाद दिए अर्जुन को कि मैं जो भी सिखाया हूं तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि तुम उसको सही तरह से उपयोग कर रहे हो। द्रोणाचार्य ने परीक्षा भी ली एक बार, सब स्नान करने गए और द्रोणाचार्य चिल्लाने गए, अरे मगरमच्छ आ गया मगरमच्छ, और एक्चुअली एक मगरमच्छ आके पकड़ लिया था, और मगरमच्छ सबके सब भाग गए, जिनको सिखाया था सारा वेद सब भाग गए, धनुर्वेद। अर्जुन गया तुरंत तीर निकाला और उसको मार दिया उसे। द्रोणाचार्य गले लगाए, बोले मैं जो भी सिखाया हूं तुम्हारे हृदय में वो स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा। सुदामा विप्र के, सुदामा और कृष्ण की कथा में भी संदीपनी मुनि कहते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे लिए अपना जान दिया, कृष्ण सुदामा पूरे दिन भर तुम लोग मेरे लिए इकट्ठा करने के लिए गए थे और बारिश आ गई, तुम लोग जान देने के लिए तैयार है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे हृदय में ये बनी रहे। जब श्रील प्रभुपाद ने एक सुंदर कविता लिखी अपने गुरु महाराज के गुणगान में, और क्योंकि उन्होंने ध्यान पूर्वक सुना था, उन्होंने कहा इम्पर्सनल इज एब्सोल्यूट, दाओ हैज इम्पर्सनल, एब्सोल्यूट इज सेंशियंट, दाओ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी दाओ हैज मूव्ड। इतना प्रसन्न हो गए भक्ति सिद्धांत ठाकुर, तुमने सही सुना है, मेरी हृदय की बात जानी है, इसीलिए मैं आशीर्वाद देता हूं कि जो भी ये लिखेगा इसको छापो, क्योंकि इसने ध्यान से सुना है। एक्चुअली श्रवणम से ज्ञान होता है, पर मूर्खतावश ऐसे तथाकथित आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो कहते हैं कि बस गुरु ने ऐसा लगाया, उसका एग्जॉस्ट हो गया, इसका ओवरफ्लो हो गया। कोई भी शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं है। दिस हैज स्पॉइल्ड एवरीथिंग इन इंडिया, इम्पर्सनल मायावादी कंसेप्शन एंड मटीरियल कंसेप्शन, के बाद ऐसा रखा ऐसा ट्रांसफर किया, तो नो मेडिकल परफॉर्मेंस, नो योगिक परफॉर्मेंस, नो मिस्टिकल ऑकल्ट मिस्टिसिज्म, नथिंग बट शुश्रूषो शब्ददानानाम, ध्यान पूर्वक सदगुरु के चरणों में बैठकर प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, समझकर उनको प्रसन्न करना, सेवा मतलब उसको उतारना अपने जीवन में, यही एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा वी डोंट फाइंड सच एन एक्सचेंज एनीवेयर इन स्क्रिप्चर्स। और अंत में प्रभुपाद लिखते हैं द प्रोसेस इज सिंपल, सुनो, बैठ के सुनो, बस कोई बोल रहा है तुमको बैठ के सुनो, द प्रोसेस इज सिंपल बट ओनली द सिंसियर पार्टी कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। इतना सिंपल है, सिर्फ बैठ के सुनने का, बस सो जाओ मत, सुनो बस थोड़ा, पर ओनली द सिंसियर पार्टी कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। सुनना कोई भी सुन सकता है, एक बच्चा भी बैठ के सुन सकता है चुपचाप, पर एक प्रामाणिक व्यक्ति जो है वो इस श्रवणम का पूरा फायदा लेगा। दूसरे लोग सुनेंगे या इधर से चला जाएगा या यहीं छोड़ के चले जाएंगे, वो बाहर जब जाएंगे वहीं डिपॉजिट करके चले जाएंगे, पर वो व्यक्ति जो सुन के अपने हृदय में बना के रखेगा। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते थे कोरियो ऐक्य आर्ना कोरी हो मोने आशा। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदन, ऐसा व्यक्ति उसका पूरा लाभ उठा पाएगा। लास्ट में एक उदाहरण देके मैं खत्म करता हूं। भागवत के जो कुछ शास्त्रों में भागवत की महिमा है, धुंधुकारी उसका कहानी है, उसको प्रेत योनि मिल गया था, किसी बांस के ऊपर बैठा था, दूसरे लोग भी सुन रहे थे गोकर्ण सब, और भागवतम उड़ा था, और जैसा भागवतम समाप्त हुआ उसका उद्धार हो गया, क्योंकि वो बड़े तीव्रता से सुन रहा था। क्यों तीव्रता से सुन रहा था? क्योंकि उसको अर्जेंसी समझ में आ गई कि कभी भी मृत्यु आ सकती है, कभी भी मैं माया में पड़ सकता हूं। नित्यम भागवत सेवया, सुनना बहुत जरूरी है। परीक्षित महाराज को मालूम था 7 दिन में मैं मरने वाला हूं, सोने में टाइम नहीं गवा सकते, कि है ही 7 दिन हमारे पास, तुम लोगों के पास बहुत दिन है चलेगा, मेरे पास है ही 7 दिन, उसमें मैं सो नहीं सकता। तो जब तक वो गंभीरता नहीं समझ में आएगी, मनुष्य योनि मिली है ऐसी चले जाएगी, देखते देखते क्या मालूम कौन कितना दिन रहने वाला है, और फिर से पता नहीं मनुष्य योनि मिलेगी कि नहीं, कहां जाएंगे, किधर जाएंगे, क्या होगा हमारा। जब तक वो गंभीरता नहीं आएगी तब तक ध्यान से सुनेंगे नहीं, आश्रय नहीं लेंगे, और जब तक आश्रय नहीं लेंगे पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इस तरह से ये प्रभुपाद जी यहां थोड़ा उभर के दिखाते हैं, श्रवणम इज सो इंपॉर्टेंट। सारा कनेक्शन जो है परंपरा का श्रवणम का है। हमारा गुरु शिष्य परंपरा वो नहीं, बाहर का मतलब क्या बोलते हैं, सिर्फ दीक्षा का नहीं है, शिक्षा का है, किसने सुना और किसने उतारा। बलदेव विद्याभूषण एक्चुअली दीक्षित नहीं थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से, पर परंपरा में उनका नाम आता है। गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर के दीक्षित, दीक्षा नहीं लिए थे। भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी से दीक्षा नहीं लिए थे, पर उनसे सुने थे, उनसे शिक्षा लिए थे और उसको उतारे थे। और इसीलिए वो कनेक्शन श्रवणम लाइन, अपना लाइन जो है वो श्रवणम का है। तेने ब्रह्म हृदा, ब्रह्मा जी ने भगवान का जो ठीक है आदि कवि सुना अपने हृदय से और हृदय में स्थापित किया। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाया, नारद मुनि ने सुना, नारद मुनि ने व्यास देव, नारद मुनि से व्यास देव ने सुना, नारद मुनि से मध्वाचार्य ने सुना। श्रवणम 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 श्रवणम, वो श्रवणम कनेक्शन, हमारा लाइन परंपरा जो है वो श्रवणम का ही परंपरा है। और जब तक सुनेंगे नहीं तो किसके बारे में बोलेंगे, किसके क्या करेंगे, क्या हम लोग, हमको क्या करना है क्या नहीं करना वो भी नहीं मालूम जब तक सुनेंगे नहीं। इसलिए द लाइन ऑफ श्रवणम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू हियर प्रॉपरली एवरीथिंग कैन बी अचीव। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। नहीं मैं सुना नहीं, सुना ही नहीं, क्या क्या कैसा भावना प्रभुपाद जी खुद लिखते हैं, प्रभुपाद जी खुद लिखते हैं एक्चुअली के एक भक्त डू योर बेस्ट एंड देन लीव द रेस्ट, मतलब अपना पूरा कोशिश करो उसके बाद जो है उसको भगवान की योजना के रूप में स्वीकार करो। व्हेन ए प्रभुपाद राइट्स दिस, व्हेन ए थिंग इज बियॉन्ड योर कंट्रोल जस्ट एक्सेप्ट इट एज कृष्णास मर्सी, जो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है उसको स्वीकार करो बस। अच्छा तुम्हारे कंट्रोल में है तो चुपचाप काम करो। आगाने के प्रभु आपकी इच्छा है, आपकी लापरवाही है ये। एक बार प्रभुपाद गुरु पूजा के लिए आए तो चरणामृत किसी ने दिया, गुरु पूजा नहीं एक्चुअली, दर्शन के बाद, दर्शन के बाद चरणामृत देते थे, तो चरणामृत दिया, चरणामृत पिए, उसमें नमक था। प्रभुपाद बोले व्हाट इज दिस नॉनसेंस, शुगर के बदले सॉल्ट डाल दिया, चीनी के बदले तुमने नमक डाल दिया। तो एक माता जी उसको समझाने, उसको प्रभुपाद कृष्णाज मर्सी, प्रभुपाद ये कृष्ण की कृपा। बोले नो दिस नॉट कृष्णाज मर्सी, यू आर नेग्लिजेंस, ये कृष्ण की कृपा नहीं है, तुम्हारे लापरवाही है। ये शक्कर के जगह नमक डाल के भगवान की कृपा है, सबको पिला के। बोला ऐसा नहीं, ये तुम्हारी लापरवाही है। तो ये अच्छा प्रश्न है एक्चुअली, कैसे समझे कि कहां मेरे को शक्ति लड़ना है और कहां एक्चुअली अल्कोहलिक एनोनिमस है ना, उनके उनका एक स्लोगन है, उसमें बहुत अच्छा है, गॉड गिव मी द इंटेलिजेंस, गिव मी द स्ट्रेंथ, हे प्रभु मुझे ताकत दीजिए, जो चीज मैं बदल सकता हूं वो मैं बदलूं। हे प्रभु मुझे ताकत दीजिए कि जो चीज मैं नहीं बदल सकता हूं उसको सहन करूं, और हे प्रभु हमको वो बुद्धि दीजिए समझने के लिए क्या बदल सकते क्या नहीं बदल सकते। जो चीज बदल सकते हैं आप नहीं बदलेंगे तो लापरवाही है, जो चीज नहीं बदल सकते हैं उसको बदलने की कोशिश करेंगे वो मूर्खता है। और बुद्धि चाहिए, क्या बदल सकते हैं उसको बदलो, क्या नहीं बदल सकते चुपचाप स्वीकार करो। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन लड़, निमित्त मात्र भव, देख सबको मैं मार, सबको मार दिए ना ऑलरेडी, तो मैं क्या लड़ू, मैं चुपचाप बैठूंगा। 18 दिन के बाद तो ये तो आज योजना आपका होने ही वाला है, मैंने देख लिया मैच फिक्सिंग आपने बता दिया, विश्व रूप में आपने समय के रूप में दर्शन भी दे दिया, भीष्म द्रोणम च जयद्रथम च सब आपके मुंह में घुस रहे, 18 दिन के बाद हम 5 लोग छोड़ के कोई नहीं रहने वाले। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्णा सेड फाइट, कृष्णा डिडंट से यू स्मोक गांजा आई विल फाइट। हाँ तुम, मैं लड़ाई करूंगा और तुम बैठ के हरे राम हरे कृष्णा गांजा मारते हो, राइट। '70 में ऐसा था, हरे राम हरे कृष्णा मतलब बस सब लोग आराम है, दम मारो दम, तुम दम मारते बैठे हो मैं यहां लड़ूंगा, ऐसा नहीं बोला भगवान ने। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो तुम, पर मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येव अधिकारस्त, तुम्हारा अधिकार है कर्म करो। प्रभुपाद ने उतना ही चेष्टा की कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए अमेरिका जाने से पहले झांसी में, उतना ही जोर लगाया, उतना ही शक्ति लगाई, एक क्षण के अंदर 2 साल का पानी फिर गया पूरा। वो क्लब मिला था, वो क्लब भी भेज दिया, वो मुंशी ने ले लिया, लेडीज क्लब बना दिया रम्मी खेलने के लिए। प्रभुपाद निराश नहीं हुए, मैंने अपना योजना, मैं गॉड प्रपोज, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, प्रभु ये मेरा प्रपोजल है, हरे कृष्ण, प्रभु ये मेरा प्रपोजल है, वेरी गुड, ठीक है आप सैंक्शन, दाई विल बी डन नॉट माई विल, मेरे को नहीं मालूम। भीष्म पितामह कहते हैं, भीष्म पितामह इसमें है, हां इसमें है, सुनिए सुनिए बहुत सुंदर है ये। भीष्म पितामह के सामने जब युधिष्ठिर महाराज आते हैं तो क्या कहते हैं सुनिए, सर्वम कालकृतम, इतने तकलीफ उठाए, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्यूयम धर्मनंदन, इतना कष्ट हुआ इतना अन्याय हुआ, तो भीष्म पितामह कहते हैं सर्वम कालकृतम मन्ये भवताम यद भवताम च यद अप्रियम सपालो यद्वशे लोके वायोरिव घनावली, इन माय ओपिनियन दिस इज ऑल ड्यू टू इनेविटेबल टाइम
under whose control everyone in every planet is carried, just as clouds are carried by wind.
और फिर कहते हैं, नहियस्य करहिचित राजन पुमान वेद विधित सितम यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंति कवयोपि.
ओ किंग, नो वन कैन नो द प्लान ऑफ द लॉर्ड श्री कृष्णा, इवन दो ग्रेट फिलोसोफर्स इंक्वायर एग्जॉस्टिवली, दे आर बिविल्डर्ड.
भगवान की योजना आप नहीं जान सकते, कभी नहीं जान सकते. तो इसलिए क्या करना है? तो प्लान नहीं, हमको मास्टर प्लान हमारे हाथ में नहीं है. हमको एक एक दिन का प्लान, कर्टन खोल के ये देखो आज का प्लान. कभी कभी हम लोग एक फार्म में गया था, तो वहां हमारे सनत कुमार प्रभु एक नोटिस बोर्ड लगा दिए. वर्कर्स लोग जो आते हैं ना, बोले ये वर्कर उधर जाएगा, ये वर्कर उधर जाएगा. एक दिन का प्लान उसी दिन, सुबह आने के बाद पता चलता है, ये गड्ढा खोदेगा, ये वहां से फेंसिंग लगाएगा, ये वो करेगा, वो करेगा. अभी वर्कर को नहीं मालूम कल मेरे को क्या बोलने करने को बोलेगा, जो गड्ढा खोदा है उसमें भरने को बोलेगा नहीं मालूम. पर एक व्यक्ति को मास्टर प्लान मालूम है कि ये पूरा 50 एकड़ में क्या क्या होना है, कहां कहां क्या क्या होना है. तो कोई भगवान की योजना को नहीं जानते. तो क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? तस्माद इदम दैवतंत्रम व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो. ओ बेस्ट अमंग द डिसेंडेंट्स ऑफ भरत युधिष्ठिर, आई मेंटेन देयरफॉर दैट ऑल दिस इज विद इन द प्लान ऑफ द लॉर्ड. एक्सेप्टिंग द इनकंसीवेबल प्लान ऑफ द लॉर्ड, यू मस्ट फॉलो इट. यू आर नाउ द अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड माई लॉर्ड, यू शुड नाउ टेक केयर ऑफ दोज सब्जेक्ट्स हु आर रेंडर्ड हेल्पलेस.
भगवान की इच्छा है, धर्म संस्था अपनार्थाय संभवामि योगे, तुमको उस स्थिति में डाल दिए, तुम राज्य चलाओ, उनकी रक्षण करो. इस तरह से तो हमें गुरु साधु शास्त्र के द्वारा समझना चाहिए कि क्या योजना है, और उसको ट्राई टू एग्जीक्यूट. सक्सेस हुआ इसका मतलब भगवान की इच्छा थी इसीलिए हुआ, नहीं हुआ भगवान की इच्छा कुछ और है. भगवान ने झांसी का सारा प्रोजेक्ट ले लिया, प्रभुपाद ठीक है, शायद बड़ा मास्टर प्लान में मेरे को बैठाना चाहते हो उधर, ठीक है, हताश नहीं हो गए, डिप्रेशन में नहीं चले गए, ठीक है. एंड कृष्णा रिवील्ड हिज प्लान, पृथ्वी ते आचे जाता नगर अधिग्राम सर्वतोचा, ही वाज सरेंडर. तो दोनों सही है. उनको उस समय परीक्षित महाराज को ऐसा स्फूर्ति मिली, प्रभुपाद को ऐसे स्फूर्ति मिली, अर्जुन को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन ही मिला, स्फूर्ति क्या, इंस्ट्रक्शन ही मिला करो. अच्छा, हमको वो स्फूर्ति नहीं मिलती, तो गुरु साधु शास्त्र चाहिए हमको कि हम जो कर रहे हैं सही है, कृष्ण के आदेश अनुसार है या नहीं है. और अगर प्रामाणिक हो तो कहीं ना कहीं से हमको सिग्नल मिल जाएगा. हमको नहीं मालूम मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, पर अगर प्रामाणिक हो, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हो, सदगुरु का आदेश का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं से भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा, गुरु भाइयों से हम सुनते हैं, तो भी यू कैन नो वेदर द प्लान इज राइट और नॉट. इसके बाद प्रामाणिकता से अपने हृदय में पूछो, क्या मेरा उद्देश्य सही है. ये सब कंफर्म करने के बाद जो निष्कर्ष आया, बिंदास करो, कोई चिंता ही मत करो, बस उसके बाद जो होगा एग्जैक्टली भगवान की इच्छानुसार होगा. मैंने शास्त्र के द्वारा यही समझा है, सदगुरु के आदेशों के द्वारा यही समझा है, सारे अपने गुरु भाइयों के साथ चर्चा करने के बाद यही ठीक समझा है, और मेरे अंतरंग से भी आवाज आ रही कि यही सही है, और इसीलिए मैं अब करने जा रहा हूं. इसके बाद जो होगा हरि बोल, प्रभु की इच्छा, 100% इट इज कृष्णस प्लान. जोर से थप्पड़ लगा हरि बोल, थपथपाए हरि बोल. That is Krishna's plan. 100% sure. Chaitanya Mahaprabhu भी लंबा वृंदावन यात्रा के लिए निकले, ये वो सबसे पूछने के लिए, बाद में ब्लॉक हो गया, आ गए वापस, ठीक. सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं मत जाओ, फिर भी थोड़ा गए, रुक गए, फिर वापस आ गए, ठीक है. नहीं था शायद भगवान की योजना, आपको वही भगवान है, उनके योजना है, क्योंकि उनका हायर प्लान है, इसीलिए लोअर प्लान को टाइम पास थोड़ा. Only he knows. Hare Krishna.
युधिष्ठिर महाराजांना परत त्यांना जन्म मागला म्हणजे पुढे जगायचा आहे म्हणून माझा एवढा प्रश्नच नव्हता, कारण त्यांना एकदा जीवदान परत कृष्णा भगवानचा एकदा दिलेलंच होत हे त्यांना माहितीच होत. आता जसा प्रश्न त्यांनी परत मागितलं जन्म वासनाला वगैरे पुढे जगायचा आहे तर ते खरोखर एकदा गेलेलेच होते ना ब्रह्मास्त्रामुळे त्यांना भगवंताने परत जीवन केलेलंच होत.
करेक्ट. मारे कृष्ण राखे के राखे कृष्ण मारे के करेक्ट. वो चाहिए तो वो सांप आए वही मर जाएगा काटने से पहले. नहीं तो ठीक है. जैसा अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज के पीछे वो जब राक्षस भेजा देव दुर्वास मुनि हरि बोल मारे कृष्ण राखे के, अगर कृष्ण मारना चाहते हैं तो ये राक्षस क्या कोई कीड़ा काट के मर सकता है, और नहीं मारना चाहे तो राक्षस क्या उसका बाप भी नहीं मार सकता मुझे. उसका बाप कौन? दुर्वास मुनि. उन्होंने सृष्टि किया ये भी नहीं मार सकते. ठीक है. हरे कृष्ण.